नमस्कार भारत, 13 मई दिन शनिवार, स्वीकार कीजिए संदीप सोनी का नमस्कार। यूरोप के कई देशों में साइबर हमला, बदले में फिरौती की मांग।
Neste caso, como em muitos ataques informáticos, os hackers utilizam técnicas que permitem ocultar.
उत्तर प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट ने डांटा, बूचड़खानों को लाइसेंस देने के लिए कहा। क्या हुआ था जब अंग्रेज हुकूमत ने कसाईयों को दिल्ली से बाहर निकाल दिया?
बादशाह ने हुक्म दिया, मेरा भी वहीं पे खेमा लगा था, बादशाह का भी खेमा वहाँ लग गया। अब फ्रेजर और डगलस भागे भागे आए, बादशाह हुजूर ये क्या कर रहे हैं? कहने जहाँ मेरे लोग वहाँ मैं।
और विवेचना में जानिए कराची बंदरगाह को तबाह करने वाले एडमिरल नंदा के बारे में।
देखा के बेडरूम के दरवाजे पेंट कर रहे थे, सफेद पेंट सारे हाथ वाथ पे लगा था।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार दिनेश उप्रेती से। ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस समेत दुनिया भर के 70 से अधिक देशों में विभिन्न संगठनों पर साइबर हमला हुआ है। हैकर्स ने रैंसमवेयर वायरस के जरिए हजारों कंप्यूटरों को निशाना बनाया और इन्हें लॉक कर दिया। हैकर्स इन कंप्यूटरों को अनलॉक करने के लिए पैसों की मांग कर रहे हैं। ब्रिटेन के अस्पताल इस हमले से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा स्पेन की टेलीकॉम कंपनी टेलीफोनिका और अमेरिका की फेडएक्स पर भी साइबर हमले का असर हुआ है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता सान स्पाइसर ने उन खबरों का खंडन करने या पुष्टि करने से इनकार कर दिया है जिनमें कहा गया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जेम्स कोमी के साथ अपनी बातचीत को रिकॉर्ड किया था। मंगलवार को ट्रंप ने कोमी को अचानक FBI प्रमुख के पद से हटा दिया था। इससे पहले ट्रंप ने एक ट्वीट में कोमी को चेतावनी दी थी कि वो मीडिया में टेप लीक ना करें। स्पाइसर ने मीडिया से कहा,
In the dinner that the president had with James Comey earlier in January, did the president implore him to pledge his loyalty?
मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस देश में निष्ठा चाहते हैं और चाहते हैं कि अमेरिका में कानून का राज हो। ये थे व्हाइट हाउस के प्रवक्ता सान स्पाइसर के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ईरान में अगले हफ्ते होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले दोनों उम्मीदवारों ने टेलीविजन पर अंतिम बहस में जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाए। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और तेहरान के मेयर ने मौजूदा राष्ट्रपति हसन रूहानी पर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का झूठा प्रचार करने का आरोप लगाया, जबकि रूहानी ने अपने प्रतिद्वंद्वी को पाखंडी बताया। इटली की सर्वोच्च अदालत ने 5 साल पहले डूबे जहाज कोस्टा कॉनकॉर्डिया के कैप्टन फ्रांचेस्को स्केटिनो को मिली 16 साल की सजा को बरकरार रखा है। कॉनकॉर्डिया इटली के द्वीप गिगलियो में चट्टानों के टकराने के बाद डूब गया था। इस हादसे में जहाज में सवार 32 लोगों की मौत हो गई थी। कप्तान स्केटिनो पर आरोप था कि वे जहाज को तट के बहुत नज़दीक ले आए थे और दुर्घटना होने पर जहाज छोड़कर भाग गए थे। अभियोजक पक्ष की एक वकील अलेसांद्रा गुआरिनी ने कहा,
Una vicenda umana terrificante, straordinaria, un peso immenso che noi avvocati ci siamo portati addosso.
हमें न्याय मिलने की उम्मीद थी और हम खुश हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये सजा सुनाकर इस कानूनी लड़ाई को खत्म किया है। हम उम्मीद करते हैं कि इस फैसले से पीड़ित परिवारों को कुछ शांति मिलेगी। ये थे वकील अलेसांद्रा गुआरिनी के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अपनी स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री एंटोनिएटा कैपोरेल ने पिछले हफ्ते घोषणा की थी कि वेनेजुएला में मातृ मृत्यु दर में 76% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि शिशु मृत्यु दर 30% बढ़ गई है। वेनेजुएला गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है और वहाँ खाने पीने की चीज़ों के अलावा दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों की भारी कमी है। रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक, ओलंपियन विनेश फोगाट और उभरती पहलवान दिव्या काकरण ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अपने अपने वर्ग में रजत पदक जीता है। फाइनल में तीनों भारतीय महिला पहलवान जापान की प्रतिद्वंदियों से हार गई। इनके अलावा ऋतु फोगाट ने 48 किलोग्राम में कांस्य जीता। इंग्लिश फुटबॉल क्लब चेल्सी ने प्रीमियर लीग खिताब जीत लिया है। शुक्रवार को चेल्सी ने वेस्ट ब्रॉस को 1-0 से हराकर लीग में अजेय बढ़त हासिल की। चेल्सी छठी बार इंग्लिश फुटबॉल लीग चैंपियन बनी है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा। नमस्कार भारत, सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ। रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और अपने मोबाइल फोन पर भी नमस्कार भारत का सीधा प्रसारण। सुबह का वक्त सोचने के लिए अच्छा समय, इससे पहले कि पारा चढ़े और गर्मी बढ़े जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। आपके हाथ में मोबाइल है, आप अपने मोबाइल पर इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और तभी आपके मोबाइल पर साइबर हमला होता है और स्क्रीन पर एक संदेश नज़र आता है जो कहता है $300 दो वरना तुम्हारे मोबाइल को ठप कर दूंगा, उसमें रखी सारी फाइलें ख़राब कर दूंगा। वो दिन शायद दूर नहीं जब मोबाइल के साथ भी ऐसा वाकई हो। फिलहाल मोबाइल तो नहीं लेकिन कंप्यूटर्स के साथ यूरोप के कई देशों में बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। इस खबर पर और जानकारी के साथ दिनेश उप्रेती।
फिरौती के लिए अपहरण। दुनिया भर में इस तरह की घटनाएं तो होती ही रहती हैं, लेकिन शुक्रवार को फिरौती के लिए साइबर हमले ने लोगों को चौंका दिया। साइबर हमला करने वाले कंप्यूटर में रखी गई फाइलों को वापस सही सलामत हासिल करने के लिए फिरौती मांग रहे थे। ब्रिटेन, अमरीका, चीन, रूस, स्पेन, इटली, वियतनाम समेत दुनिया भर के 70 से अधिक देशों पर रैंसमवेयर का साइबर हमला हुआ। ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस यानी NHSV रैंसमवेयर से बुरी तरह प्रभावित हुई है। हैकर्स ने ब्रिटेन की हेल्थ सर्विस से जुड़े कंप्यूटरों को निशाना बनाया। NHS का कहना है कि इस साइबर हमले के कारण कुछ अस्पतालों को मरीजों की पहले से तय सर्जरी को रद्द करना पड़ा है। कुछ खबरों में कहा गया है कि इस साइबर हमले का सबसे अधिक असर रूस पर हुआ है। रूस के गृह मंत्रालय का कहना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो का इस्तेमाल कर रहे कुछ पर्सनल कंप्यूटर्स पर हमले के बाद उसने इस वायरस का पता लगाया। पुर्तगाल में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा केंद्र के समन्वयक पेत्रो वेगा ने कहा कि इस समस्या से निपटना मुश्किल था।
Neste caso, como em muitos ataques informáticos, os hackers utilizam técnicas que permitem ocultar...
कई साइबर हमलों में हैकर्स ने ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया जिससे हमला करने की जगह पता न चल सके और इसीलिए इस संकट से निपटने में वक्त लग रहा है। ये थे पेत्रो वेगा के शब्द। दुनिया भर में हुए ये साइबर हमले भले ही एक दूसरे से जुड़े लग रहे हैं, लेकिन साइबर विशेषज्ञ इस हैकिंग के लिए अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के उस टूल को जिम्मेदार मान रहे हैं जो हाल ही में लीक हुआ था। साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञों का मानना है कि हैकर्स ने उन तरीकों को अपनाया है जिसे नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने डेवलप किया था और शैडो ब्रोकर्स नामक ग्रुप ने इसे चुराने का दावा किया था। रैंसमवेयर एक कंप्यूटर वायरस है जो कंप्यूटर्स में मौजूद फाइलों को बर्बाद करने की धमकी देता है और इसके बदले बिटकॉइन के रूप में $300 मांगता है।
यूरोप के कई देशों में कंप्यूटर्स पर साइबर हमला, बदले में फिरौती की मांग। रिपोर्ट सुना रहे थे दिनेश उप्रेती।
बीबीसी इंडिया पोल। क्या तीन तलाक के मुद्दे के बहाने राजनीति की जा रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि इसे राजनीति का मुद्दा न बनाया जाए। क्या तीन तलाक ही मुसलमान औरतों की एकमात्र समस्या है? शिक्षा, रोजगार, बराबरी जैसे मुद्दे पर बहस क्यों नहीं होती? इस बार इंडिया बोल में इसी विषय पर चर्चा होगी। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 13 मई को शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811-7000 या 1811-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
चलिए अब रुख करें भारत का। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को फटकार लगाई है और सरकार किसी को मांस खाने से नहीं रोक सकती, ऐसा दो टूक शब्दों में कहा है। इसलिए बूचड़खानों को दोबारा लाइसेंस जारी किए जाएं, इस संबंध में दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। इस खबर पर और जानकारी दे रहे हैं लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अवैध बूचड़खानों को बंद कराने संबंधी कुछ याचिकाओं की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को कई दिशा निर्देश दिए। हाईकोर्ट का कहना था कि वैध बूचड़खाने खुलवाना सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार किसी को मांस खाने से नहीं रोक सकती। याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट में उपस्थित होने वाले वकील वीके सिंह कहते हैं,
उच्च न्यायालय ने अपने 87 बेंच के आर्डर में ये कहा है कि सारा हाउसेज बनाना, इसका मॉडर्नाइजेशन करना, ये सरकार का और लोकल बॉडीज का कर्तव्य है। सरकार ने अपनी जो दलीलें दी थी कि हमारा कोई दायित्व नहीं है, उस चीज को हाईकोर्ट ने दरकिनार कर दिया।
हाईकोर्ट ने साफ किया कि नए लाइसेंस जारी होने और पुराने लाइसेंस रिन्यू होने तक सभी बूचड़खाने बंद रहेंगे। इसके अलावा कोर्ट ने सभी मीट कारोबारियों को कहा कि वे लोग 17 जुलाई तक अपने अपने ज़िले के जिलाधिकारी कार्यालय या जिला पंचायत कार्यालय के पास लाइसेंस के लिए आवेदन करें। वहीं हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के वकील से ये भी कहा है कि वो 17 जुलाई को बताएं कि इस दौरान कितने लाइसेंस जारी किए गए और कितने लाइसेंसों को रिन्यू किया गया। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि उनके लाइसेंस 31 मार्च को खत्म हो गए, लेकिन लाइसेंस के नवीनीकरण का आवेदन देने के बाद भी सरकार उसे रिन्यू नहीं कर रही है। छोटे मांस व्यवसायियों को सरकार के इस फैसले से काफी नुकसान भी उठाना पड़ा है। इलाहाबाद में रहने वाले एक मांस व्यवसायी शानू कहते हैं,
लाइसेंस पुराना तो रिन्यू नहीं किया, बोले कि भी बन नहीं रहा है, अरे यहाँ चाय बेचना पड़ रहा है और कोई काम तो लोग जानते नहीं।
उत्तर प्रदेश में सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने अवैध बूचड़खानों को बंद करने का आदेश दिया था। हालांकि ये आदेश सिर्फ अवैध बूचड़खानों पर ही लागू था, लेकिन नए लाइसेंस जारी न होने और पुराने लाइसेंसों का नवीनीकरण न होने के कारण मांस व्यवसायियों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा था। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
1857 की क्रांति पर हाल ही में एक किताब आई है जिसका नाम है दास्तान-ए-गदर। हिंदी में इसका अनुवाद राणा सफवी ने किया है और इस किताब में कुछ दिलचस्प किस्से बताए गए हैं। बीबीसी हिंदी के रेडियो संपादक राजेश जोशी ने इस बारे में राणा सफवी से बात की।
थोड़ा सा आज के बारे में बात करते हैं। जैसे इस किताब में जिक्र आता है कि कुछ जो मांस का व्यापार करते थे व्यापारी, उनको अंग्रेजों ने शहर से बाहर निकालने की घोषणा कर दी और वो सब जाकर के बादशाह के सामने पहुंचे और बादशाह ने उनके पास अपना टेंट लगा दिया था, कहा कि मैं भी इनके जैसा हूँ। क्या क्या किस्सा था वो?
देखिए, इसमें बादशाह के साथ इस तरह के दो किस्से हुए और बादशाह ने दोनों के साथ बिल्कुल बराबर का व्यवहार किया। अंग्रेजों ने कहा कि जितने कसाई हैं शाहजहानाबाद के अंदर वो बहुत गंदगी मचाते हैं और उनकी वजह से बहुत माहौल खराब हो रहा है, तो उनको शाहजहानाबाद से बाहर निकाला जाएगा। अब बादशाह जब सुबह झरोका दर्शन के लिए आए तो उन्होंने देखा कि नीचे जो है सारे कसाई बैठे हुए हैं अपने अपने खेमे लगाए हुए, तो उन्होंने पूछा क्या बात है, तो उनका ऐसे ऐसे हमको निकाल दिया गया है शहर से, अंग्रेजों ने हमको ये हुक्म दे दिया है। बादशाह ने हुक्म दिया मेरा भी वहीं पे खेमा लगा दो, बादशाह का भी खेमा वहां लग गया। अब फ्रेजर और डगलस भागे भागे आए, बादशाह हुजूर ये क्या कर रहे हैं? कहले जहां मेरे लोग वहां में, तो उन्होंने कहा ठीक है हम इनको वापस लेते हैं शहर के अंदर। कुछ दिन बाद घोसियों के साथ भी यही हुआ जो दूध बेचते थे, बादशाह ने फिर अपना खेमा वहीं लगवाया और फिर उनको मजबूर किया अंग्रेजों के इन्हें शहर में लिया जाए। तो उन्होंने हमेशा बराबर का दोनों के साथ बर्ताव किया, हिंदू और मुसलमान एकदम मिलजुल के भाइयों की तरह रहते थे। ये बात बहुत ही उभर के आती है इसमें दास्तान-ए-गदर में भी और उस जमाने की और बहुत सी किताबें लिखी गई हैं, छोटे छोटे मोनोग्राफ्स भी हैं उस जमाने में। अगर आप देखें जैसे फूल वालों की सैर, तो जब बादशाह जाते थे तो पहले जो पंखा था, आज के दिन भी होता है फुलवालों की सैर तो आज भी चलती है, उसमें जब बादशाह के जमाने में सबसे पहला पंखा जो था वो योगमाया के मंदिर में जाता था, उसके बाद दूसरे दिन दरगाह जाता था। और अगर किसी वजह से बादशाह योगमाया मंदिर में खुद लेके पंखा नहीं गए तो कभी दरगाह नहीं जाते, तो कहते थे कि हमारे बाकी जो हैं उनको रियाया को चोट पहुंचेगी कि मैं मंदिर नहीं गया और मैं दरगाह चला गया। तो ये माहौल था।
इतिहास ये जो आपने अभी बताया और इस किताब में जिसका जिक्र है, उससे आज हम क्या सबक ले सकते हैं?
सबसे बड़ा सबक जो अंग्रेजों ने कहा कि हमने सीखा कि हिंदू मुसलमान ऊंच जात और नीच जात सब एक साथ हो गए, तो उसके बाद उन्होंने एक शुरू किया कि सबको अलग करें। हमको ये सबक लेना चाहिए कि जब तक हम साथ हैं तभी तक हम मजबूत हैं और एक दूसरे से लड़ के हम कभी रह नहीं सकते। रहना हमको सबको यही है, हम सब यहीं के बाशिंदे हैं और हमें प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। जितने प्यार से रहेंगे उतने ही मजे में रहेंगे, लड़ झगड़ के क्या फायदा है।
ये थी इतिहासकार राणा सफवी। आइए इतिहास से वर्तमान में। आज है 13 मई, दिन शनिवार। स्टूडियो में आ चुके हैं अखबार, दिनेश उप्रेती मेरे सामने बैठे हुए हैं। दिनेश जी, क्या कह रहे हैं आज दिल्ली से छपे अखबार, क्या सुर्खियां हैं आज?
शुक्रवार को EVM पर सर्वदलीय बैठक थी और ये खबर सभी अंग्रेजी अखबारों और हिंदी अखबारों के पहले पन्ने पर है। इंडियन एक्सप्रेस की सुर्खी है, भविष्य में लोकसभा और विधानसभा के सभी चुनाव वोट वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल यानी कि VVPAT से कराए जाएंगे।
वो जो पर्ची लगती है मशीन में?
जी, वो जो पर्ची लगती है कि आप ये तय कर सकते हैं बाद में, अगर ये जांच कराना चाहें कि आपने अपना वोट किसको दिया था, तो उससे पता लगाया जा सकता है। इसको लेके अभी काफ़ी बवाल भी मचा था। आपके विधायक ने जो है वो विधानमंडल में जो है ये दिखाया था कि कैसे जो है हैक किया जा सकता है।
हालांकि वो मिलती जुलती मशीन थी, वो मशीन नहीं थी जिसका इस्तेमाल वोटिंग में किया जाता है।
जी, इसके अलावा अखबार ने सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत के कश्मीरियों पर दिए बयान को भी प्रमुखता से छापा है। अखबार के मुताबिक जनरल रावत ने कहा है कि सेना कश्मीरियों के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो कश्मीरियों को चरमपंथियों से अलग करना चाहती है। इंडियन एक्सप्रेस की ही एक और खबर के मुताबिक कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान बहुत पहले ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहुंच गया था। अखबार के मुताबिक सैन्य अदालत के जाधव को मौत की सजा सुनाने के 12 दिन पहले ही पाकिस्तान ने हेग स्थित इस अदालत को बता दिया था कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।
अच्छा,
तो जहां पहले ये मामला ऐसा सुलझता हुआ दिखाई दे रहा था कि भारत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया है और वहां से कुछ मिल सकता है, तो कुछ पेचीदा सा मामला लग रहा है। द हिंदू ने नेशनल हेराल्ड के इसको प्रमुखता से छापा है, हालांकि ये खबर जो है लगभग हर पन्ने की हर अखबार के पहले पन्ने पर है। अखबार की सुर्खी है यंग इंडिया के खिलाफ आयकर जांच पर रोक से कोर्ट का इनकार। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को यंग इंडिया लिमिटेड के खिलाफ आयकर जाँच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी की इस कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी है।
तो ये क्या इस बात का अंदेशा लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं कानूनी मामला होने की वजह से?
बिल्कुल बिल्कुल। द स्टेट्समैन ने तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी को प्रमुखता से छापा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तीन तलाक शादी खत्म करने का सबसे घटिया तरीका है। ये खबर कई और दूसरे अखबारों के पहले पन्ने पर भी है।
मैं देख पा रहा हूँ दैनिक जागरण ने ये सुर्खी लगाई है, तीन तलाक शादी खत्म करने का सबसे घटिया तरीका।
इसके अलावा ये खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में भी है। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक और खबर को भारत के साथ खराब संबंधों के लिए अमेरिका के पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। जस्टिस कर्णन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, इस खबर को हिंदू ने पहले पन्ने पर जगह दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि कलकत्ता हाई कोर्ट के जज सी एस कन्नन को अवमानना का दोषी ठहराते हुए 6 महीने की कैद की जो सजा सुनाई गई वो निर्णय सोच समझ कर लिया गया था। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की खबर है कि मीट कारोबारियों के नए लाइसेंस जारी करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है। कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार से 17 जुलाई तक जवाब दाखिल करने को कहा है।
तो 17 जुलाई के बाद पता चलेगा कि अब इस मामले में आगे उत्तर प्रदेश में बूचड़खानों को किस तरह लाइसेंस दिए जाते हैं, नवीनीकरण होता है, अभी 17 जुलाई के बाद पता चलेगा। बहुत शुक्रिया समाचार पत्रों की सुर्खियां बताने के लिए।
खबर सच है अगर BBC पर है।
और आइए अब सुनते हैं एडमिरल SM नंदा की कहानी रेहान फजल की जुबानी। ये वही एडमिरल नंदा हैं जिन्होंने 1971 के युद्ध में कराची बंदरगाह पर पाकिस्तानी युद्ध पोतों को डुबो दिया था।
जब 1971 का माहौल ऐसे बन रहा था कि लड़ाई का होना वॉज ए पॉसिबिलिटी, प्राइम मिनिस्टर साहब पूछती थी कि एडमिरल साहब आप क्या करेंगे, तो उस वक्त मैंने ये थाम लिया कि कुछ भी हो अगर इस वक्त लड़ाई होगी नेवी हैज गॉट टू प्ले इट्स पार्ट।
ये आवाज थी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत के नौसेना अध्यक्ष रहे एडमिरल SM नंदा की। लड़ाई शुरू होने से पहले ही उन्होंने उस समय के मशहूर अखबार ब्रिट्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर लड़ाई होती है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इसे पाकिस्तान के सबसे बड़े बंदरगाह कराची तक ले जाऊंगा। मैं उस बंदरगाह को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं क्योंकि मेरा बचपन वहां बीता है। 1971 में जब लड़ाई शुरू हुई तो एडमिरल नंदा ने अपना वो वादा पूरा कर दिखाया। 1971 की लड़ाई से पहले रूस ने भारत को ओसा क्लास मिसाइल बोट्स दी थी जिनका इस्तेमाल पश्चिमी तट के रक्षण के लिए किया जाना था। ये एडमिरल नंदा और उनके अधिकारियों के दिमाग की उपज थी कि वो इन मिसाइल बोट्स को टो कर कराची ले जाएंगे। दिन में वो कराची के तट से 250 किलोमीटर दूर रहेंगे और रात में मिसाइल बोट्स से हमला करेंगे, लेकिन इससे पहले राजनीतिक नेतृत्व की मंजूरी लेना जरूरी था। मिसाइल बोट पर कराची हमले में शामिल लेफ्टिनेंट कमांडर विजय जेरत, जो बाद में कॉमोडोर बने, याद करते हैं।
अक्टूबर 71 में वो प्राइम मिनिस्टर साहिबा के श्रीमती गांधी के पास पहुंचे और उन्होंने पूछा कि मैडम क्या आपको कोई एतराज़ होगा कि मैं कराची को अटैक करूं? कुछ सोच विचार के बाद श्रीमती गांधी ने बोला, एडमिरल, इफ देयर इज अ वॉर देयर इज अ वॉर। तो परमिशन मिल गई,
इसको एक तरह से परमिशन माना गया।
बिल्कुल,
एडमिरल नंदा की इस दुस्साहसी योजना का नौसेना के अंदर ही काफी विरोध हुआ। एडमिरल नंदा अपनी आत्मकथा द मैन हु बॉम्ब्ड कराची में लिखते हैं।
एडमिरल कोहली ने अपना प्रेजेंटेशन देते हुए कहा कि पाकिस्तानी नौसैनिक पोतों के पास हमसे ज्यादा हथियार हैं और उनकी फायरिंग क्षमता भी हमसे बेहतर है, लेकिन हमारे चीफ का कहना है कि हमें कराची पर हमला करना ही है। कोहली के कहने का अंदाज ये था जैसे उनसे कमजोर संसाधनों के साथ कराची पर हमला करने के लिए कहा जा रहा है, और अगर ये हमला सफल नहीं होता है तो इसके लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। वहां मौजूद हर शख्स की निगाह मेरी तरफ उठी, लेकिन मैं चुप रहा। बाद में मैंने कोहली से कहा कि अगर आप इस ऑपरेशन से सहमत नहीं हैं तो मेरे पास इसके सिवा और कोई विकल्प नहीं है कि मैं रक्षा मंत्री के पास जाकर कहूं कि आपसे पश्चिमी बेड़े की कमान वापस ले ली जाए।
बाद में एडमिरल कोहली इस बात के लिए तैयार हो गए कि उन्हें जो भी आदेश दिया जाएगा उसे वो पूरा करेंगे। पहला हमला 4 दिसंबर की रात को मिसाइल बोट निपट, निर्घट और वीर ने किया। उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तानी विध्वंसक खैबर और माइन स्वीपर मुहाफिज को डुबोया बल्कि किमारी तेल टैंकों में भी आग लगा दी। दूसरा हमला 8 दिसंबर की रात में हुआ जिसमें पाकिस्तानी ऑयल टैंकर्स को अपनी मिसाइल का निशाना बनाने वाले लेफ्टिनेंट कमांडर विजय जेरथ ही थे।
जैसे ही मैंने चौथी मिसाइल फायर करी, फिर वो पिजट्स दिमाग में थे, सो आई पेड अ सिग्नल टू माय ओटीसी, सर 4 पिजन्स हैप्पी इन देयर नेस्ट। अजीब सा सिग्नल है बट दिमाग में आया, और मैं नीचे के ब्रिज से ऊपर अपर ब्रिज पे जाने के लिए शुरू हुआ। एंड सर आई एम रीजॉइनिंग, वो मेरे क्वार्टर पे थे, मैं इधर जा रहा हूँ, तो मैंने व्हील दिया और ऊपर को चल पड़ा। और जैसे ही मैंने सीढ़ी पे पैर रखा, 2-3 स्टेप्स थे बाहर जाने के लिए, तो उनका जवाब आया, दिस इज द बेस्ट दिवाली वी हैव एवर सीन। जैसे मैंने दरवाज़ा खोला, नॉर्थ से लेके ईस्ट तक सारा होराइजन आग में था और आग की लपटें 40-60 डिग्री ऊपर चढ़ रही थी।
एडमिरल नंदा का एक और नोवेल आइडिया था कि कोई भी भारतीय पोत बंदरगाह में लंगर डाले न रहे बल्कि समुद्र की ओर रवाना हो जाए। भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी और एडमिरल नंदा के भांजे कमांडर अरुण सैगल याद करते हैं।
जब 71 में लड़ाई छिड़ी तो नेवल फ्लीट बॉटल अप नहीं हो जाए, इसलिए नेवल फ्लीट वॉज ऑलरेडी एट सी। मैं खुद एक यंग ऑफिसर था और जब लड़ाई छिड़ी तो हम तो कराची के साउथ थे, तो सील्ड एनवलप दिए गए थे, तो एक जगह पे सब प्लानिंग हो रही थी, इंटेलिजेंस इनपुट्स आ रहे थे। और एक अभी रिसेंटली पिछले साल एक RNAW ऑफिसर ने एक किताब निकाली, नेवी के जो प्लानर्स थे उन्होंने कहा कि सर आपको याद है मनोरा में कराची में क्या था, पर हमें कराची हार्बर की फ़ोटो चाहिए टू रीवैलिडेट एवरीथिंग। 2 फोटोग्राफर्स को एक मर्चेंट शिप पर डाला गया, मर्चेंट शिप के डॉक्टर को बोला गया कि आप इनको ले जाइए और पेशेंट बना लेना। वो कराची हार्बर में गए, फ़ोटो ली और फिर दुबई से वापस आ गए थे। ये फोटो मैंने खुद नेवी में देखी हैं।
एडमिरल नंदा ने 1971 में दूसरा बड़ा काम किया, भारतीय विमानवाहक पोत INS विक्रांत को पाकिस्तानी पनडुब्बियों से बचाना। उन्होंने विक्रांत को अंडमान में तैनात किया और पाकिस्तानियों की आंख में धूल झोंकी कि वो विशाखापट्टनम में खड़ा है। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तानी पनडुब्बी PNS गाजी उसकी टो में वहां पहुंची, उसमें विस्फोट हुआ और वो वहीं डूब गई।
एडमिरल कृष्णन ने फॉल्स रिक्वायरमेंट्स रेज करी फ्यूल के लिए, खाने की सामग्री के लिए, पानी के लिए, जैसे कि विक्रांत ने विशाखापट्टनम में आना है। ओपन बाजार में लोगों को बोला कि भाई हमारे को 100 kg प्याज चाहिए, ये वो, और सिग्नल ट्रैफिक होता है वो भी फेक सिग्नल ट्रैफिक जनरेट किया गया। तो ऐसे माहौल बनाया गया कि विक्रांत आ रहा है, और फिर मेरे ख्याल से सामग्री भी जितनी भी ऑर्डर करनी थी वो पोर्ट में लाई गई। जो स्पाइस थे पाकिस्तान के, वो मैसेजेस पाकिस्तान को फीडबैक दिए जा रहे थे कि विक्रांत आ रहा है, विक्रांत के लिए ये रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है, वो इंटर्न गाजी को डिप्लॉय कर रहे थे। जब समय आया तो गाजी विशाखापट्टनम हार्बर के बाहर थी। हार्बर में एक चैनल होती है कि ये डेप्थ है, इसमें जहाज़ चल सकता है। तो जो नॉर्मल स्टाइल ऑफ ऑपरेशन होता है, तो पहले एस्कॉर्ट्स जाते हैं, वो हार्बर को क्लियर करते हैं कि माइन फील्ड नहीं है, कोई जहाज़ नहीं है, कोई पनडुब्बी नहीं है, ये सब करके। तो वो सब सिमुलेट किया गया और अल्टीमेटली विक्रांत तो अंडमान में था। तो ये कह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशंस वेरी क्लियर। जो उनकी फर्स्ट इलेवन थी वो भी बहुत ही होनहार थी।
एडमिरल नंदा की शख्सियत की खूबी थी उनका मानवीय पक्ष। वो छोटे से छोटे नाविक की राय लेते और उसका हालचाल पूछते। उनको नजदीक से जानने वाले वाइस एडमिरल एस के चांद याद करते हैं।
मुझे याद है, मैं 68 में लेफ्टिनेंट कमांडर था बंबई में और ये फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ थे एज अ वाइस एडमिरल। एक दिन मैंने इनसे पूछा, सर माई वाइफ एंड आई वुड लाइक टू आपको घर पे खाने पे बुलाना चाहता हूँ। कहते जरूर आऊंगा। मैं हैरान हो गया कि इन्होंने एकदम मान लिया। ये ऐसे शख्स थे, मेरे घर भी आ गए थे।
एडमिरल नंदा को हर छोटी चीज जो खराब हो जाती थी को ठीक करने का बेहद शौक था।
वो सबसे छोटा काम अपने आप करने को तैयार होते थे। जैसे मैंने देखा हुआ है, किचन में जाएंगे तो अगर कोई डिशेज हैं तो उनको खुद धो लेंगे और ठीक जगह पे लगा देंगे। तो वो डिफेंस कॉलोनी में रह रहे थे, देखा कि एडमिरल साहब किधर हैं, पूछते थे कि एडमिरल साहब ऊपर हैं। तो बेडरूम के दरवाजे पेंट कर रहे थे, सफ़ेद पेंट सारे हाथ वाथ पे लगा था। ये उनकी ट्रेट जो है, उनके इनग्रेंड थी उनके अंदर। और हम डरते थे कि अगर हमारी गाड़ी भी ख़राब हो जाएगी उनके घर के बाहर, तो उसके बाद आधे पुर्जे ही वापस रहेंगे, क्योंकि वो उसको खोल करके ठीक करके।
भारतीय नौसेना को आत्मनिर्भर बनाने में एडमिरल नंदा की बहुत बड़ी भूमिका थी। ये उनकी दूरदर्शिता का ही परिणाम था कि भारतीय नौसेना बायर्स नेवी से बिल्डर्स नेवी बन गई।
इन्होंने शुरू करवाया एक प्रोग्राम लियांडर प्रोजेक्ट मैसेगन डॉक्स में, डिजाइन ले लिया यूके से और वहां पे फर्स्ट लियांडर शिप्स जो बनी है थी वहां बनी थी। और उसके बाद में इनका हमारा डिजाइन डिपार्टमेंट जो था नेवल आर्किटेक्ट, उनको इन्होंने बहुत बढ़ावा दिया। अब ये स्टेज आ गया है कि हम मे बी कैरियर भी 30-40% जो है वो इंडिजिनस आया है इसी डिजाइन डिपार्टमेंट से। और सबमरीन हम बाहर से जरूर लेते हैं, बट जितने अदर बाकी जहाज बनते हैं सब यहाँ से यहीं डिजाइन होते हैं। ये किसने शुरू किया था? नंदा साहब ने। और इन्होंने इस पे बहुत जोर लगाया और आज हम बायर्स नेवी से बिल्डर्स नेवी बन गए।
रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
विवेचना के समापन के साथ ही वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर सुनेंगे दिनेश उप्रेती से।
बीबीसी समाचार। ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस समेत दुनिया भर के 70 से अधिक देशों में विभिन्न संगठनों पर साइबर हमला हुआ है। हैकर्स ने रैंसमवेयर वायरस के जरिए हजारों कंप्यूटरों को निशाना बनाया और इन्हें लॉक कर दिया। हैकर्स इन कंप्यूटरों को अनलॉक करने के लिए पैसों की मांग कर रहे हैं। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता सान स्पाइसर ने उन खबरों का खंडन करने या पुष्टि करने से इनकार कर दिया है जिनमें कहा गया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जेम्स कोमी के साथ अपनी बातचीत को रिकॉर्ड किया था। ईरान में अगले हफ्ते होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले दोनों उम्मीदवारों ने टेलीविजन पर अंतिम बहस में जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। इटली की सर्वोच्च अदालत ने 5 साल पहले डूबे जहाज कोस्टा कॉनकॉर्डिया के कैप्टन फ्रांचेस्को स्केटिनी को मिली 16 साल की सजा को बरकरार रखा है। कोस्टा कॉनकॉर्डिया इटली के द्वीप गिगलियो में चट्टानों से टकराने के बाद डूब गया था। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अपनी स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त कर दिया है। रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक, ओलंपियन विनेश फोगाट और उभरती पहलवान दिव्या काकरन ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अपने अपने वर्ग में रजत पदक जीता है। इंग्लिश फुटबॉल क्लब चेल्सी ने प्रीमियर लीग खिताब जीत लिया है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला राजेश चौहान ने। हमारा अगला प्रसारण शाम 7:30 बजे। बीबीसी इंडिया बोल्ड। दीजिए इजाजत।